लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। यदि प्रभु ने हमारा साथ न दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निकल गए होते। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, प्रचंड धारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई, फंदा टूट गया और हम निकल भागे। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। श्रोताओं, ये था स्तोत्र ग्रंथ का 124वां भजन। इसी भजन की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस भजन में मंदिर का उपदेशक समस्त इसराइल के लोगों से यह दोहराने का आग्रह करता है कि यदि प्रभु ने उनका साथ न दिया होता तो उनके विरोधी उन्हें कब के निगल गए होते। इसलिए वे सब मिलकर इसराइल के रक्षक प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। इस तथ्य पर हमने गौर किया था कि यह गीत उन तीर्थयात्रियों का गीत है जिन्होंने नबूखेत नेजर के दमन काल में बाबुल निष्कासन और उत्पीड़न का सामना किया था तथा प्रभु की कृपा के कारण अपने घरों को सुरक्षित लौट पाए थे। श्रोताओं, वस्तुतः 124वें भजन में भजनकार इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सब कुछ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। जरूरत है सिर्फ यह स्वीकार करने की कि ईश्वर उद्धार करता है। ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है उसे स्वीकार करने की नितांत आवश्यकता है, तब ही हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। यह याद करने की नितांत आवश्यकता है कि ईश प्रतिरूप में ईश्वर ने मानव का सृजन किया। इसी तथ्य को मन में रखकर मनुष्य को अपने सब कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिस सृष्टिकर्ता ईश्वर ने सृष्टि को रचा है वे उसका पुनः सृजन करते, वे अनवरत उसे नवीकृत किया करते हैं। अस्तु, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह भजन इन शब्दों से समाप्त होता है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के अगले यानी कि 125वें भजन पर दृष्टिपात करें। 5 पदों वाला यह छोटा सा भजन भी तीर्थयात्रियों का ही गीत है, जिसमें भक्त समुदाय प्रभु की आराधना करता और इस भरोसे की अभिव्यक्ति करता है कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भजनकार कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियों पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। जेरूसलम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी पर अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा, धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु भक्तों की भलाई कर, किंतु जो कुटिल मार्गों पर भटकते हैं प्रभु उन्हें कुकर्मियों के साथ निकालेगा। इसराइल को शांति। श्रोताओं, जेरूसलम शहर स्थित सियों पर्वत की ओर आरोहित होते तीर्थयात्रियों को सचमुच में यह पर्वत एक सुदृढ़ चट्टान के सदृश दिखा होगा जो उनकी रक्षा कर सके। दाऊद ने भी इसी के संदर्भ में प्रभु ईश्वर को अपनी चट्टान और अपना दुर्ग कहकर पुकारा था। स्तोत्र ग्रंथ का 18वां भजन दाऊद द्वारा उसी समय रचा गया था जब प्रभु ने उसे उसके शत्रुओं और दुष्ट साउल के हाथों से बचा लिया था। इस भजन के प्रथम पद इस प्रकार हैं, प्रभु मेरे बल, मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक है। इसी प्रकार समुएल के दूसरे ग्रंथ के 22वें अध्याय के दूसरे और तीसरे पदों में दाऊद का स्तोत्र इस प्रकार है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जहां मुझे शरण मिलती है वह मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरा गढ़, मेरा आश्रय और मेरा मुक्तिदाता। वस्तुतः 125वें भजन का रचयिता कहना चाहता था कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उनका आभ्यंतर विश्वास से परिपूर्ण रहता है तथा उनका आत्मविश्वास चट्टान की तरह अटल होता है। सियों के नगर के विषय में भी इसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ के 46वें भजन के प्रथम 3 पदों में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमारा आश्रय और हमारा सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगलें और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाएं। श्रोताओं, 125वें भजन में मानव विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए हमें 2 प्रतीक प्रदान किए गए हैं। भजनकार कहता है कि जिस प्रकार जेरूसलम पर्वतों से घिरा हुआ है उसी प्रकार प्रभु अपनी प्रजा को घेरे रहते हैं अभी और अनंत काल तक। यहाँ अनंत काल से तात्पर्य संसार के अंत से कदापि नहीं है, इसलिए कि प्रभु ईश्वर बुराई की शक्तियों को सदा के लिए विजयी नहीं होने देंगे। वास्तव में भजनकार इस तथ्य को रेखांकित कर रहा था कि मानव जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हमें कोई उचित रास्ता नहीं सूझता, हम असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करें और क्या नहीं। शेक्सपियर के अभिनायक हैमलेट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। टू बी और नॉट टू बी, यह प्रश्न था। हम जो भी सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता, इसीलिए यह प्रश्न कि क्या करें और क्या नहीं हमारे मन में अनवरत कायम रहता है। विश्वासी भी जानता है कि वह जीवन की तरकणा में एक प्रकार से फंस कर रह गया है, तथापि वह अपने विश्वास का परित्याग नहीं करता। दूसरी ओर गैर विश्वासी है जिसके पास निराशा के अलावा और कुछ शेष नहीं है। इस प्रकार श्रोताओं, 125वां भजन हमें आश्वासन देता है कि यदि प्रभु ईश्वर में हमारा विश्वास अटल है तो कोई भी आपदा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसीलिए भजनकार इसराइल को शांति शब्दों से इस भजन को समाप्त करता है। यह शांति उन सब के लिए है जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन पथ पर अग्रसर रहा करते हैं।
दिन से दिन नव कथा कहे, निशि से निशि संदेश सुने, नहीं वचन कुछ शब्द न कर, फिर भी हारी भोजन।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सुसमाचार प्रचार के लिए गठित परमधम पीठ धम्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले ने परमधम पीठ मिशन सोसाइटी को प्रसिद्ध संत पापा फ्रांसिस के संदेश के मूल बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैटिकन रेडियो के वरिष्ठ पत्रकार अलेसांद्रो जिसोती के साथ साक्षात्कार में अपने विचारों को साझा किया। कार्डिनल तागले ने कहा कि परमधम पीठ मिशन सोसाइटी के लिए संत पापा के संदेश में कई चीजें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। मैं उनमें से कुछ का नाम ले सकता हूं। उनमें से पहला है, संत पापा फ्रांसिस परमधम पीठ मिशन सोसाइटी के राष्ट्रीय निदेशकों को संबोधित करने के निमंत्रण को स्वीकार किया था जो इस साल के मई महीने में होने वाला था। महामारी के कारण सम्मेलन रद्द हो गया। अपने दर्शकों की सभा के रद्द होने को अपने लिए आराम का अवसर मानने के बदले संत पापा ने अपना संदेश तैयार किया और उसे भेज दिया। मेरे लिए इस संदेश में न केवल संत पापा के शब्द और विचार हैं, किंतु मिशन के लिए उनके उत्साह और पीएमएस के प्रति चिंता दिखाई पड़ती है। दस्तावेज को पढ़ते हुए हमें उनकी भावना, उनकी उत्सुकता, उनकी आशा और चिंता पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात पर मैं विश्वास करता हूँ कि जब परमधम पीठ मिशन सोसाइटी के राष्ट्रीय निदेशकों को संदेश में संबोधित किया गया है, संत पापा चाहते हैं कि ईश्वर की पूरी प्रजा इसे पढ़े, इसका अध्ययन करे और इस पर मनन चिंतन करे। यह राष्ट्रीय निदेशकों के लिए मार्गदर्शन के समान है, किंतु यह पूरी कलीसिया के लिए मिशनरी भावना और संलग्नता के क्षेत्र में अंतःकरण की जाँच के समान है। संत पापा फ्रांसिस जोर देकर कहते हैं कि मिशन पौत्रात्मा का मुफ्त वरदान है, न कि उस प्रणाली का फल जो दुनिया की दक्षता के मॉडल का अनुसरण करता है। कार्डिनल ने कहा कि यह कहना महत्वपूर्ण है कि संत पापा फ्रांसिस निपुणता और उस प्रणाली के खिलाफ नहीं हैं जो हमारे मिशन को फलप्रद और पारदर्शी बनाता है, बल्कि वे हमें कलीसिया के मिशन को मापने के उस खतरे की चेतावनी देते हैं जिसमें सिर्फ मॉडल अथवा स्कूल व्यवस्थापकों द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों और परिणामों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वे कितने ही अच्छे और उपयोगी क्यों ना हों। दक्षता का साधन मदद कर सकता है, किंतु कलीसिया के लिए मिशन का स्थान कभी नहीं ले सकता। सबसे अधिक दक्षता के साथ चलाई गई कलीसियाई संस्था भी सबसे कम मिशनरी हो सकती है। मिशन पौत्रात्मा का वरदान है, इस पर जोर देने के द्वारा संत पापा हमें उस मूल सच्चाई की ओर वापस दे रहे हैं कि विश्वास स्वयं ईश्वर का वरदान है। ईश्वर का राज्य ईश्वर के द्वारा स्थापित एवं पूर्ण किया गया है। कलीसिया ईश्वर की सृष्टि है। कलीसिया अपने मिशन के लिए निर्मित है और पृथ्वी के अंत तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु पिता के द्वारा पौत्र आत्मा को भेजते हैं। कलीसिया और मिशन के मूल में ईश्वर की कृपा है, मानव की योजना नहीं। हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना, दिव्य वरदानों को परखना, विश्वास में उन्हें ग्रहण करना और दाता की इच्छा अनुसार कार्य करना। कृपा के इस मूल से अलग कलीसिया का कार्य न सिर्फ परमधम पीठे मिशन सोसाइटी की योजनाएं होंगी, बल्कि कार्यों और क्रिया के निश्चित योजनाओं तक ही सीमित होंगी। कार्डिनल ने यह भी कहा कि कोविड-19 ने मानव परिवार में बहुत अधिक दुख और भय उत्पन्न किया है। हमें कलीसिया और इसके मिशन पर इसके प्रभाव को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में इस परिस्थिति को अधिक समझने के लिए कई साल लग सकते हैं, किंतु हम घोषणा कर सकते हैं कि इस महामारी की अनिश्चितताओं, तालाबंदी, बेरोजगारी, आय में घाटा और अन्य प्रभावों के बीच पौत्र आत्मा ने करुणा, साहस, परिवार में प्रेम, सतत प्रार्थना, ईश वचन पर चिंतन, यूखरिस्त की भूख, सरल जीवन शैली की ओर वापसी, सृष्टि की देखभाल आदि वरदानों को प्रचुर मात्रा में बरसाया है। कलीसिया पौत्र आत्मा के आश्चर्यजनक कार्यों पर विस्मय करने के लिए बुलाई गई है। गाजा पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। इस छोटी भूमि पर जहां करीब 2 मिलियन लोगों के घर हैं, इस समय कोविड-19 के लगभग 55 मामले दर्ज किए गए हैं। ये शब्द गाजा की कारितास यरूशलेम के महानिदेशक अमीन सबागा के हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कारितास की वेबसाइट में प्रकाशित हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती है अत्यंत सावधानी बरतते हुए कमजोर आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इस संकट काल में हम 15 घंटों की बारी में काम कर रहे हैं। सबागाह ने गाजा के लिए प्रार्थना का आग्रह किया है, जिससे कि गाजा एवं विश्व के सभी गरीब एवं घनी आबादी वाले स्थान महामारी से बच सकें तथा महामारी के बाद संघर्ष का अंत हो जाए। उधर भारत में 24 मार्च से जारी तालाबंदी के कारण लाखों प्रवासी मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। दिहाड़ी श्रमिक काम, भोजन एवं आवास से वंचित हैं। यह स्थिति बदतर होती जा रही है। सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो देखा जा सकता है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कपड़े हटाने का प्रयास कर रहा है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक गर्मी, भूख और प्यास के कारण जमीन पर लेटी मृत पड़ी है। वह अभी अभी प्रवासियों के लिए चलाए जा रहे विशेष ट्रेन द्वारा गुजरात से बिहार लौटे थे। उनके परिवार वालों के अनुसार वह शनिवार को वहां से रवाना हुई थी और भोजन तथा पानी के अभाव में ट्रेन में अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। 2 महीनों के लिए तालाबंदी के कारण यातायात के साधन बंद थे। इस बीच शहरों में भूख और असुविधाओं से बचने के लिए लोग अपने गांव लौटने लगे। उनमें से कुछ हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर घर लौटे। करीब 1 सप्ताह पहले सरकार ने प्रवासियों की मदद के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा मुहैया कराई है, किंतु यह भी कम जटिल नहीं है। भारत की मीडिया की रिपोर्ट अनुसार करीब 40 विशेष ट्रेन गलत गंतव्यों में भेजी गयी। उदाहरण के लिए वसाई के प्रवासी मजदूरों को गोरखपुर ले जाने के लिए विशेष ट्रेन चली, किंतु वह राउरकेला पहुंची, जो करीब 900 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। उधर संतन्ना की पुत्रियां कई तरह से प्रवासी मजदूरों और गरीबों की मदद कर रही हैं। वे कलीसिया के अधिकारियों के मार्गदर्शन में कांके और मांडर में 2 शेल्टर होम चला रही हैं। सिस्टर शिवानी ने बतलाया कि वहां संतन्ना की धर्म बहने रात और दिन लोगों की मदद कर रही हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।